So we are continuing the topics on Unit 1, and here in this PPT we start with the concept of crystallography, and we have to do the block functions and the block theorem as a part of the syllabus. But before we move into the block function and the block theorem, we have to see the origin of these things and how the topic is important. So the first thing to look at is what is known as the free electron model. तो अभी तक तो क्या है कि जब अपन electrons का discussion आता है, अपन ये बोलते हैं कि electron is considered to be a particle, और उसका characteristic क्या है कि उसका charge है mainly. So we look at the charge of the electrons, how the electron moves and so on, and in moving अपन ये consider करते हैं उसका charge का behavior कैसा होता है. So then you have the concept of current and so on. तो इस case में भी अपन ये जानते हैं कि electron का charge जो है, it is a fixed amount and that is one of the smallest charges carried by a single particle. So in some cases we also consider the mass of the electrons, but other than these two we are not very concerned about other things. And so that means most of the cases upon electron ko ek particle ke roop mein dekhte hain, aur usual classical approach jo hai usse iska analysis hota hai. Lekin इस पर्टिकुलर केस में आगे कुछ फिनोमेना समझने के लिए अपने को इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर भी देखना पड़ेगा. सो वी हैव टू लुक एट दी वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलरली इन अ क्रिस्टल. सो राइट नाउ ओवर हियर वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग क्रिस्टल्स एंड क्रिस्टलोग्राफी. सो इन दैट वी आर गोइंग टू लुक एट द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. So you must have heard the concept of particle waves, right? Now this is an interesting thing. Historically kya ho jata tha, whole thing started with the investigation of the nature of light. Light is extremely and interesting for human beings, kyunki jo bhi apna visual perception hai duniya ka, jo dekhta hai, it is because of the presence of light. And not just light, it is actually what we see as light is a very narrow band of electromagnetic radiation, which is a part of a larger family. Or wo family of radiations starts from the gamma rays with extremely short wavelengths. Gamma rays, then you have the hard x-rays, soft x-rays, then the UV, and then visible IR and so on. So farak ye hai ki agar aap isko arrange karenge, the wavelength changes accordingly, the frequency will change because the speed in vacuum C is fixed. So agar C fixed hoga to lambda ya mu, that means wavelength ya frequency change, koi ek change karenge to dusra bhi change होना पड़ेगा उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए. नाउ अकॉर्डिंगली व्हाट हैपेंस इज व्हेन न्यू चेंजेस, दैट इज फ्रीक्वेंसी चेंजेस, द एनर्जी आल्सो चेंजेस, बिकॉज यू नो दैट द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी इज ई इज इक्वल टू एच न्यू, एच बीइंग द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट. सो नाउ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट जैसे बोलते हैं यू हैव अ क्वांटम मैकेनिकल आइडिया विच कम्स इन. ओके, so we saw that initially agar aap sankshipt mein bolo to the nature of light was explained by Newton to be as particles, corpuscles, jo unhone corpuscles ke naam bataya hai, aur usko use karke reflection and refraction was satisfactorily explained. But even that failed to explain why the speed of light is slower through a medium other than vacuum. Or well, close to वैक्यूम इज वॉट वी नॉर्मली कॉल एज एयर, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग सी का वैल्यू जो है अपन जो कोट करते हैं वो वैक्यूम के लिए है. सो वहीं से फेलियर आ ही गया है. लेटर ऑन द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ये भी नोटिस किया. तो ये जो है किसी भी तरीके से अपन पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं. तो उसके लिए क्या किया कि द वेव नेचर ऑफ लाइट वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड देन यू हैव द मैक्सवेल्स इक्वेशंस एंड सो ऑन एंड इट वॉज अ हाईली सक्सेसफुल थियरी. देन वॉट हैपेंड वॉज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज डिस्कवर्ड. नाउ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय सिंपली इन्वोकिंग द वेव नेचर. खाली वेव नेचर को कंसिडर करके वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं. सो इन द अर्ली 1900s आइंस्टाइन यूज्ड द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड क्वांटम थियरी. क्वांटम आइडियाज वर इंट्रोड्यूस्ड बाय प्लैंक. आई एम नॉट गोइंग टू गो टू द हिस्ट्री ऑफ व्हाई दैट वाज देयर, यू कैन लुक इट अप. मैक्स प्लैंक हैड इंट्रोड्यूस्ड इट एंड आइंस्टाइन बोरोड दिस एंड ब्यूटिफुली कंबाइंड दैट विद अ कंसेप्ट ऑफ पैकेट्स, वेव पैकेट्स विच बिहेव एज पार्टिकल्स. सो एक फुल सर्कल में आ गया. लाइट पार्टिकल नेचर से शुरू करके वेव नेचर में आ गया, वापस पार्टिकल लाइक नेचर ऑफ लाइट पे आ गया. नाउ दिस वॉज क्वाइट एक्साइटिंग. इन दिस देर वर अ लॉट ऑफ इवेंट्स विच हैपेंड इन बिटवीन, बट डी ब्रॉगली थॉट अबाउट दिस एंड थॉट कि अगर दिस थिंग व्हाट यू कॉल प्योर रेडिएशंस लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैन शो पार्टिकल नेचर, उल्टा क्या सही नहीं है क्या? व्हाई कांट पार्टिकल्स शो वेव प्रॉपर्टीज? सो देन यू हैव द famous Davison and Germer experiment and so on, and but we'll not go to that eager again. However, through this the de Broglie equation, which is it looks very simple, lambda is equal to h by p, p being the momentum, h the Planck's constant. So for any particle with a momentum p, corresponding wavelength lambda aap calculate कर सकता है और उसका प्रैक्टिकल यूज बहुत है. सो एनीवे, सो नाउ एनी मूविंग पार्टिकल कैन बी एसोसिएटेड विद अ वेवलेंथ एंड सो आल्सो फॉर इलेक्ट्रॉन्स. एंड वी विल सी दैट कमिंग टू आवर केस, इलेक्ट्रॉन्स जब क्रिस्टल के थ्रू भी मूव होता है तो उसका वेव नेचर को कंसिडर करना ज़रूरी है. ऑल राइट, so we come to what is known as the free electron model. Now free in what sense we will see. So according to this model, the most weakly bound electrons in a constituent atom are able to move freely throughout the material and the ions do not affect it. IONs, ions. Ye now if you remember your crystal ka definition, wo kya tha? You have and certain arrangement of points in space. These are imaginary points, we call them as the lattice. Each lattice has a certain type of symmetry or a geometry, and ek ek lattice point ke upar agar aap atoms ko rakhenge, you have a basis. Now obviously agar atoms they come together to form a solid, there has to be some sort of interaction, and interaction means essentially exchange or some sort of transaction of electrons. All right, now ek atom se electron add hota hai ya nikal dete hain, to it gets converted into a charged particle which we call as an ion. So generally we have the positive or the cations which sit at these lattice points, and the electrons are free to move, but not all electrons, remember that. सी इन आप अगर थोड़ा जंप करें अपन और एटॉमिक मॉडल आपको याद है तो उसमें क्या होता है, यू हैव अ न्यूक्लियस एंड यू हैव इलेक्ट्रॉन्स विच आर अरेंज्ड इन ऑर्बिट्स और शेल्स, राइट? इफ़ यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ देम, इट इज़ दे आर अरेंज्ड इन शेल्स. सो वॉट कीप्स देम देयर? इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या पकड़ के रखते हैं? इट इज़ अ न्यूक्लियस, बिकॉज अ न्यूक्लियस हैज़ अ चार्ज विच इज़ ऑपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन. इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड सो इट होल्ड्स इट. Now, so that the electron doesn't fall into it, it has to keep running. All right. So, that is a classical model. Now, the point is this. If you have a large number of electrons, large number of orbits or orbitals or shells, the further the shell, jitna dur ye shell hai nucleus se, utna nucleus ka hold uske upar weak hota jata hai. So the outermost electrons are weakly bound and those are what we call as the valence electrons. और ये valence electrons ही bonding, जैसे कि molecules बनने के लिए या कोई solid material बनने के लिए कोई भी chemical reaction है, इस type की चीज़ों में जो participate होता है ये outermost electrons ही usually होते हैं, क्योंकि बाकी जो है they are quite tightly bound by the nucleus. So these electrons, outermost electrons, are the ones which are weakly bound. So they, because they are weakly bound, with fairly low energies, किसी भी रूप में उसको energy कम मिलता है, तो easily they can break that bond and move. Now here, remember, in a solid material, although it can break the bond and move, it doesn't have enough energy to escape the material. Now that effect is what we call as an electron ejection through, you give enough energy which is equal to the work function of the material. Matlab, ye electron release karne ke liye jitna energy dena padta hai, that is the work function. Utna dene ke baad thoda kinetic energy hoga, to hi electron eject hoga. Baki kya hai, it is still bound by the nucleus, but weak enough that it can break the bonds and move from one atom to the other or freely throughout the materials. तो अपने ये free electron model में अपन ये consider करते हैं कि ions या nuclei जो है they are passively sitting there, जहाँ इसको crystal में जहाँ बिठाया है वहाँ बैठते हैं और बस, इसका कोई ज़्यादा role नहीं है, खाली electrons को escape नहीं करे इस तरीके से bond करके रखना ही इसका काम है. So in this weakly bound free electron model, we consider the ions do not affect the movement of the electrons. So the total energy, now you know that the total energy is a sum of the potential and the kinetic energies, right? Now ye potential energy ya potential ka kya role hai, what is the importance of this? See, if you remember, the relationship between the potential and the field or the force is that the potential, the negative gradient of the potential itself is a scalar quantity, or uska negative gradient le lo, ya single dimension mein bolo to this thing dv by dx. अगर x डायरेक्शन का अपन ले रहे हैं सिंगल डायमेंशन, dv बाई डी एक्स माइनस ऑफ dv बाई डी एक्स विल गिव यू द फोर्स और द फील्ड. नाउ सो द थिंग हियर इज, इफ v डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू x, व्हाट विल हैपन? दैट विल गो टू जीरो, राइट? सो इफ द पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट, यू कैन सेट दैट टू बी इक्वल टू जीरो एंड सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड. Why? Because it is completely uniform, koi gradient nahi exist kar rahe, to there is no force acting on it. Agar force nahi act hota hai, to kya ho jayega? Electron ka energy change nahi hota hai. So the potential energy can be neglected in this model, and that is why we call the electron a free electron, because it is free to move, since there is no particular potential existing or no force acting on it to restrict that moment. So total energy mein do terms hai, kinetic energy aur potential energy. So because you can neglect this potential energy or its effects, we need to consider only the kinetic energy. So in metals, these electrons which are free to move are called the conduction electrons, okay, and they are responsible for the electrical conductivity in metals. Electrical conductivity, kya? You know that good electrical conductors are generally also good thermal conductors and vice versa. All right. So, dono phenomenon jo hai, they originate because of the free conduction electrons, and that is why. What do they conduct? They conduct this electricity or heat, whichever. That's why. So the it is these which are responsible for this, the free electrons. So remember, atom mein kai sare electrons honge, lekin outermost electrons hi isme participate kar rahe, baki jo hai nucleus bind karke rakhte hain, and they are what we call as the ions. Okay, so we will continue with the free electron model over here, because it is important. If you do not understand this, you cannot understand what is happening later on. So strictly speaking, ye syllabus mein iska heading to nahi diya hai, lekin ye agar aapko samajh mein nahi aayega, to aage bhi samajh mein nahi aayega. To isme koi derivation wagera apan nahi kar rahe, just looking at some concepts. But is model, halanki ye kafi successful hai, काफ़ी फिनोमिना जो दिखता है वो एक्सप्लेन करने के लिए, फिर भी इस मॉडल से पैरामैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, सी ऑल मटेरियल्स शो सम सॉर्ट ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर. इट कैन बी पैरामैग्नेटिक, इट कैन बी फेरोमैग्नेटिक, एंड ऑल मटेरियल्स आर डायमैग्नेटिक. तो अगर पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक भी नहीं है तो भी डायमैग्नेटिज्म आपको दिखेगा, वो छोड़ दो. नाउ पैरामैग्नेटिक कब होता है? पैरामैग्नेटिक तब होता है जब एक फ्री मतलब एक स्पिन जो है इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्ट करता है, वो कैंसिल आउट नहीं होता है बिकॉज ऑफ एन ऑपोजिट स्पिन, एंड एक स्पिन का कंट्रीब्यूशन होता है 1 μb. ऑल राइट, सो यू हैव, बिकॉज ऑफ दिस यू कैन हैव अ पैरामैग्नेटिक मोमेंट विच एग्जिस्ट. तो इस मॉडल से ये पैरामैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जो दिखता है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का, हीट कैपेसिटी, फिर एक्सट्रीमली लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रॉनिक फ्री पाथ्स एक्सेट्रा जो है, इस मॉडल सक्सेसफुली नहीं एक्सप्लेन कर पाता है. तो कुछ तो मिसिंग है इसमें. सो अभी तक अपन ने कोई क्वांटम कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया ही नहीं है. ऑल राइट, वी ओनली लुक्ड एट टू थिंग्स, दैट इज you have regularly arranged atoms, us atoms mein se kuch electrons free hai to move throughout the crystal. Okay, so to explain such effects, what the heat capacity, electronic free paths, etc., quantum mechanical concepts ko bhi introduce karna zaruri hai. So the quantum mechanics has to be invoked, and the concept of matter waves has to be introduced. Matter waves, your de Broglie waves. So lattices, as you have seen earlier, have a periodic structure, aur iske through jo hai matter waves propagate kar sakte hai freely in such a periodic structure. So again, we are emphasizing that in this model we have to consider the wave nature of electrons. See, this is something like optics mein aapne padha hoga second year mein. Optics is divided into two parts. Aapke it starts with geometrical optics, and then you have the physical optics. Now in geometrical optics, what is the assumption? That light travels in straight lines, that is all. Okay, so you don't have to consider the wave nature of light. So us geometrical optics mein apan refraction or reflection related jitna bhi phenomena hai wo apan dekhte hain, right? And that is what we generally deal with in the, jaise aap chashma pehne ke liye, telescope, microscope, ye sab banane ke liye, we don't really have to look so much at the wave nature of light. Although sometimes, yes, when we are looking at defects, etc., but wo bhul jao. By and large, जहाँ ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आता है, अपने को बस ये कंसिडर करना है कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. सो दैट इज़ वाई यू जस्ट हैव टू, देर आर सम रूल्स ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट्स लाइट एंड विद दैट यू कैन जनरेट द पाथ टेकन बाई लाइट. हाउएवर, वेयर डज दैट फेल? इट फेल्स वेन यू कम टू अगेन इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, राइट? ये तीन एक्सप्लेन करने के लिए खाली वो सिंपल स्ट्रेट लाइन पाथ अडॉप्ट करता है, इससे नहीं चलता है. यू हैव टू लुक एट द वेव नेचर ऑफ लाइट. हाउएवर, ऑल द टाइम यू डोंट हैव टू डू इट, राइट? सो सिमिलरली इस केस में, जैसे अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को देख रहे हैं तो गुड, यू डोंट हैव टू कंसिडर द वेव नेचर ऑफ लाइट. हाउएवर, इफ़ यू हैव टू लुक एट अदर प्रॉपर्टीज विच आर एक्सिबिटेड बाय मेटल्स स्पेशली, देन यू हैव टू कंसिडर द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नाउ इलेक्ट्रॉन्स वेव नेचर इज़ नॉट इंस्टिंक्चुअल. अपने को इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर इमेजिन नहीं कर सकते हैं. एंड हियर यू हैव टू कंसिडर द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, वेव्स. ओके, नाउ कमिंग टू स्लाइड नंबर 4, लेट अस लुक एट व्हाट द फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल असम्पशंस क्या है, और जस्ट बेसिकली क्वालिटेटिवली क्या है ये चीज़. सो इफ यू यूज दिस अप्रोच, ईच इलेक्ट्रॉन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वेव फंक्शन साई. नाउ दिस इज ऑल्सो फेमिलियर टू यू, दिस सिंबल साई, विच इज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन एंड टाइम, सच दैट साई स्टार साई represents the probability of finding the electron at that particular position at that particular time. Okay, ek instantaneous value hai ye. So if you integrate psi star psi over the whole volume in which it is enclosed, you should get one, if it is one electron, all right, because that electron is there somewhere in that volume, right? So we'll see why that is important. But anyway, now साई क्या है आप पूछो तो यू कैन नॉट रियली डिस्क्राइब इट. यू कैन ओनली डिस्क्राइब वॉट इट मीन्स इन टर्म्स ऑफ साई स्टार साई. नाउ वी डोंट राइट दिस एज साई स्क्वायर, एक्चुअली साई स्टार साई, बिकॉज साई इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन. नाउ इन अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन यू हैव टू टेक, यू डोंट टेक डायरेक्टली द स्क्वायर, यू मल्टीप्लाई इट विद द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दैट, राइट? ओके, so psi star psi is the probability of finding the electron at that particular position at that particular time, remember that. So this wave function is then used in the Schrodinger equation. Now the Schrodinger equation, what it does is, in quantum mechanics, the Schrodinger equation plays the role of Newton's laws of motion and conservation laws, okay, conservation law of energy in क्लासिकल मैकेनिक्स. नाउ आपको याद है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इन पेपर वन वॉज योर मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इन फर्स्ट ईयर. तो शुरू होता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से. इनफैक्ट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, ये तो शायद 8वीं क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, राइट? द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज यू कैनॉट डिराइव दिस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स, ओके? बट नाउ माइंड, वी विल नॉट गो इन टू दैट. बट वॉट डज इट से एक्चुअली, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, एक पूरा पेपर इसके लिए क्यों डिवोट होता है, राइट? द रीजन इज दिस, दैट इट टेल्स यू अंडर सर्टन कंडीशंस यू आर एबल टू प्रेडिक्ट वॉट हैपन्स टू अ बॉडी और अ पार्टिकल. दैट मीन्स इफ यू अप्लाई फोर्स, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन यू अप्लाई दैट फोर्स, अंडर वॉट कंडीशंस इट हैपन्स, यू कैन प्रेडिक्ट द आउटकम, कि ये पार्टिकल या बॉडी का मूवमेंट कैसे होगा, कितना वेलोसिटी होगा, ये फ्रैगमेंट होगा, एंड सो मेनी अदर थिंग्स. सो इट ऑल स्टार्ट्स विथ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. सो यू यूज दैट टू डिटर्मिन सर्टेन क्वांटिटीज. ऑलराइट, यू डिटर्मिन द मोमेंटम, यू डिटर्मिन द पोजिशन, देन यू डिटर्मिन द एनर्जी एंड सो ऑन, राइट? सो now in determining the energy and also looking at various moments, there are certain conservation laws. Usi ke तहत अपन आगे जा सकते हैं, because the total energy has to be conserved, the total linear momentum is conserved and so on. तो ये conservation laws का role है, और अभी तक आप फेमिलियर हो गया है, सो यू डोंट रियली थिंक अबाउट इट. नाउ द क्वांटम मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज द श्रोडिंगर इक्वेशन. नाउ द श्रोडिंगर इक्वेशन इज एक्चुअली अ ऑपरेटर इक्वेशन. ओके, सम बेसिकली यू राइट दिस एज एच साई इज इक्वल टू ई साई. एच इज द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एंड इट ऑपरेट्स ऑन द वेव फंक्शन साई टू गिव यू द determine the it's actually an eigenvalue problem, and the eigenvalues that you get are actually what we call as the quantity which can be determined experimentally. So anyway, so it predicts the future outcomes of a dynamic system, okay, something which is changing or which is under a certain type of force which acts on it. Lekin classical sense mein, see, in the classical thing, you give a exact number. Now, in classical mechanics, you are able to determine the position and the momentum exactly. Nothing stops you, right? But there is no limitation on how accurately you can do it. Whereas, in quantum mechanics, there is an inherent uncertainty which is built into nature. And that has nothing to do with how good your measuring instrument is. So you know that the best possible outcome is given by delta p delta x is equal to h cross h by 2 pi, right? H cross by 2 or h cross, let's not worry too much about that. So, but the thing is, h is a very small value, all right? So generally it doesn't bother us, but when you have very small sizes and large velocities coming in, then this makes a big difference. So what happens is, in classical sense, aap kuch calculation karke kuch quantity nikal rahe ho. Yahi cheez, when you use the quantum mechanical approach, and in this case we are looking at the Schrodinger equation, through that when you look at it, it will not tell you, it will not give you an exact number per se. What it does is, it gives you in terms of probabilities of outcomes. But the thing is, in probabilities, if you have a large ensemble, quite a large number of sample data or whatever it is, sampling it is, large number of particles ho sakta hai, kuch bhi ho. This case mein, you would get values which are actually what you would get if you were to do the experiment. Okay. Now, you know that in statistics, for example, agar aap se main poochho ki ek coin toss karenge, the head या tail आने का क्या probability है? Immediately everybody knows, because it's the first thing you learn in probability, 50% है. Okay. Now, ठीक है, तो एक बार आपने flip किया, head आया, तो क्या next time आप करेंगे तो 100% head ही आएगा क्या? ऐसा नहीं है. ठीक है, तो मैंने दो बार flip किया, दो बार हो सकता है head ही आ जाए या टेल ही आ जाए, या एक बार हेड आ जाए एक बार, एनीथिंग कैन हैपन. सो इफ आई डू दिस टू टाइम्स एंड टू टाइम्स आई गेट हेड, दैट मीन्स 100% प्रोबेबिलिटी हेड का है क्या? नहीं, दैट इज नॉट व्हाट इट मीन्स. व्हाट इट मीन्स इज, यू इफ यू डू दिस सम 100 times 1000 times, देन ऑन एन एवरेज यू विल सी दैट हाफ ऑफ द टाइम इट इज हेड्स, हाफ ऑफ द टाइम इट इज टेल्स. ओके, so in any statistical approach, or whenever you use the concept of probability, you have to look at a large ensemble, otherwise it makes no sense. And that is why it predicts the future outcomes of a dynamic system, but it does that in terms of probabilities of outcome. It can tell you ye probability hai if you repeat the experiment a large number of times. Okay, so let us move on to the free electron model. So thoda thoda aur complicate karte ja rahe apan. All right, so now we look at a simplest case of one electron moving in a one dimensional crystal with just a single length a. Okay, now the crystal can be large in size, and this is what we'll see in the block when we go complicate things a little bit, or when we go to the block model. But right now we are not worried about that, we are looking at a single a. Okay, so ये फिगर जो है इसमें स्लाइड नंबर 5 में एक फिगर दिया है राइट हैंड साइड में, उसमें दिखाया है द सेपरेशन बिटवीन द टू पोटेंशियल द वॉल्स विच इन बिटवीन विच द इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप्ड, ओके इज ए. सो वी स्टार्ट फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड इफ यू मूव अलॉन्ग द राइट साइड अंटिल द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए द इलेक्ट्रॉन फील्स द सेम पोटेंशियल. Now, if it feels the same potential, you can always set that potential to be equal to zero. क्योंकि उसका effect zero के बराबर है, ठीक है. इसका एक उदाहरण मैं देती हूँ. देखो आप, आपको याद है अगर कोई ये particle अपन कोई height h पे ऐसे पकड़ के रखा है, उसका potential energy कितना है? बराबर mg h. All right? Now, if, for example, एक पाइप के अंदर मैंने पानी भरा, ठीक है, ये पाइप जो है बिल्कुल बराबर मैंने पकड़ के रखा है, एक बूंद पानी जो है नाल एक एंड से गिरेगा ना दूसरे एंड से. If you want that water to flow, क्या करना पड़ेगा? You have to tilt it such that दोनों एंड्स के बीच में हल्का सा हाइट का डिफरेंस हो, राइट. So suppose one end is at a height of 1 meter and the other one is at the height of 0.8 meters. ठीक है, उतना भी difference हो तो भी ये flow होगा. So absolute value is not important. What is important is the difference. Right? So now flow नहीं हो रहा है, भले आपने 1 meter height पे रखा या ground पे ही रखा या 5 मीटर्स पे रखा, 0.8 मीटर्स पे रखा, इफेक्ट तो बराबर ही है, वाटर नहीं फ्लो हो रहा है. सो आप क्या कह सकते हैं कि वो पोटेंशियल जो है ज़ीरो है. उस कंसेप्ट अपन ने यहाँ भी यूज़ किया है, ठीक है. तो इसमें वन डायमेंशनल क्रिस्टल है और इस फिगर के अनुसार वी हैव दैट डायमेंशन वी हैव चोजन टू बी द एक्स डायरेक्शन और x इज इक्वल टू जीरो में एक पोटेंशियल वॉल आ रहा है जिसका हाइट इनफाइनाइट है और a डिस्टेंस के बाद दूसरा वॉल आ रहा है जो कि वो भी इनफाइनाइट है उसका हाइट और इन दोनों वॉल्स के बीच में फर्क कितना है a. सो दिस वी हैव पुट इन द फॉर्म ऑफ द कंडीशन, ओके. ऑन स्लाइड नंबर 6 वी हैव सीन, okay, I'm sorry, we were still at slide number 5, sorry. So here at the two ends of the crystal a very high potential, in fact infinite, v0 is equal to infinity, prevents the electron from leaving the crystal. By the way, vo nahi hai, ye v0 hai, wo subscript hona chahiye tha, wo pata nahi, wo khair, v0 is equal to infinity, okay. So it will never gain enough energy to escape from the well. Kuwa jaise hai, jiska dono diwar jo hai, it is infinite in length, right? So on slide number 6, ye jo conditions hai apna, V of x, that means the value of V at x is equal to 0, which we call as V0, all right? This thing is equal to V0 for x less than or equal to 0 or greater than or equal to a. That means ye wall ke dono side bahar jo hai uska value V0 hai, lekin wall ke andar jo hai between 0 and a, that means the value of x greater than 0 but lesser than a, then between these two points the value of V is equal to 0. So this is it's a very simple condition. Diwar ke bahar jo hai kuch aur value hai V0 aur wo bhi even type ka value apan maan le, lekin diwar ke andar jo hai, that means for the value of x lying between 0 and a, the value of V of x is equal to 0. So the Schrodinger equation in this case, अगर आप इलेक्ट्रॉन का मास m मान ले तो ये हो जाएगा, यू कैन राइट दिस एज डेल स्क्वायर वाई बाय डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एट पाई स्क्वायर एम बाई स्क्वायर ई साई एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो. ऑल राइट, वील नॉट रियली वरी अबाउट फ्रॉम वेयर दीज टर्म्स हैव कम. दिस इज एक्चुअली दिस द सेकेंड डेरिवेटिव ओवर हियर. This is your standard equation where you take the kinetic and the potential energies, and here the kinetic energy we have disregarded and we have just put this in a single dimension. All right, so here is a second order equation obviously. So is type ki ye equation jo hai ye, in fact you must have already done this for a single particle, your hydrogen atom model, but anyway. So now agar ye single dimension mein nahi hota, del square y by as y nahi, I'm sorry, del square psi by del d square psi by dx square will come as a gradient, but anyway, so we'll not worry about that. So okay, now you don't have to worry what the equation is, doesn't matter. The equation has a very simple solution, which is equal to, it's actually a sinusoidal wave. You can look at this, see this, it's a sinusoidal wave. So psi of x is equal to a sine kx plus b cos kx. Okay, now we'll see. So a sine, a and b are arbitrary constants, and these ये a और b का value कैसे determine करेंगे, boundary conditions लगाओ. और अपना boundary conditions क्या है, इधर value of x for v lying between 0 and a is equal to 0. So there are two boundary conditions which have to be simultaneously satisfied. Right. So we have written equation 1 to be equal to is the Schrodinger equation over here. Okay. It's a very simplified form. And equation 2, like I told you, don't worry too much about it, but this is just to show you how this is done so that you get an idea of what is happening over here. So we have a solution which we have proposed. Ab kya karna hai, isko wapas us equation mein dalo. All right, to pehla boundary condition kya hai, psi is equal to 0 at x is equal to 0. To equation 2 mein psi of x left hand side agar 0 hoga, iska matlab kya hai, a sin kx plus b cos kx is equal to 0. All right, now here, yeah, so a ka value kuch bhi ho, sin 0 is always 0, so that first term a sin kx will go to 0. All right, just because x is equal to 0, because, and that is what we are looking at. So first term to gaya, ab second term kab disappear hoga, jab b cos kx is equal to 0. Now at x is equal to 0, cos of 0 is 1. So cos kx is not 0. So kya hona chahiye? B has to go to 0. So already we have simplified. B is equal to 0. Now A kya hoga? Ye dekhte hain. Now the second boundary condition is that psi is equal to 0 at x is equal to A. Alright. But we have seen that by the first boundary condition B already 0 hai. Toh theek hai. तो बचा क्या है, a sin kx. अब इस केस में x 0 नहीं है, x इज इक्वल टू a, सो a sin ka इज इक्वल टू 0. अब टेम्पटेशन बहुत होता है, ठीक है a 0 है, अब a और b दोनों 0 है, तो हुआ क्या है, psi of x इज ऑल्सो 0. psi of x इज 0 भले x का कुछ भी वैल्यू हो जाए, अगर a और b दोनों 0 है तो वो ट्रिवियल कंडीशन हो जाता है, राइट. तो उस केस में क्या है, साई ऑफ एक्स इज 0, भले कुछ भी एक्स हो, दैट मीन्स इनसाइड ऑल्सो द इलेक्ट्रॉन है ही नहीं क्या, सो दैट कैन नॉट बी पॉसिबल. सो बी इज जीरो बट ए कैन नॉट बी जीरो. ऑल राइट. एंड सो के ए साइन के ए इज इक्वल टू जीरो. नाउ सो साइन के ए कब जीरो होता है, व्हेन के इज एन पाई बाय ए. ऑल राइट. ये जो साइन का आर्ग्यूमेंट है, के ए शुड बी इक्वल टू एन पाई, राइट, बिकॉज एन पाई साइन जीरो इज जीरो, देन साइन पाई इज जीरो, साइन टू पाई इज जीरो, साइन थ्री पाई इज जीरो एंड सो ऑन, राइट. सो एन इज एन इंटीजर, वन टू थ्री एक्सेट्रा. सो साइन के ए इज इक्वल टू जीरो मीन्स के ए इज इक्वल टू एन पाई और के इज इक्वल टू एन पाई बाय ए. नाउ n is 1, 2, 3, etc. n cannot be 0. क्योंकि n 0 है, वापस trivial condition आ गया, तो psi will go to 0 everywhere, भले a का या b का value कुछ भी हो जाए. So, in slide 4, we have seen that psi star psi का क्या मतलब है? The probability of finding the electron at that particular position at the given time. So, if psi is equal to 0 everywhere in the box, then if n is equal to 0, that means the electron is again not present, which cannot be the case, right? Okay, so on slide 11 we can see the different shapes of the waveform. Now you will notice one thing, all of them start at x is equal to 0 and end at x is equal to a. All right, because that is a boundary condition. इलेक्ट्रॉन जो भी करेगा इसके अंदर ही करना है. सो यू कैन नॉट हैव समथिंग विच इज क्रॉसिंग द व्हाट यू कॉल द पोटेंशियल वॉल्स एट द टू साइड्स. सो इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू जीरो एट द एक्स एक्सिस, टचिंग द एक्स एक्सिस, एंड इट हैज़ टू एंड एट द अदर पॉइंट ऑल्सो. हाफ वे इट कैन नॉट स्टैंड. सो फॉर एन इज इक्वल टू वन यू गेट जस्ट one wave over here, you will get two crest for n is equal to 2 and 3 for n is equal to 3 and niche for n is equal to 10. You can see, you can count there, 3 and 3 6 and 4 10. 10 crest ya 10 troughs ye hai. And all of them, so neatly it has to fall within this length A. That is the nature of the wavelength for this, under these conditions. So right now I will stop here, because इस अभी तक के जो talk है काफ़ी नए चीज़ आपको introduce किया है और ये बहुत लंबा हो जाएगा. So I am stopping here at slide number 11 in this audio talk. सो आई सजेस्ट दैट आप डाउनलोड करके ये स्लाइड नंबर 11 तक थोड़ा एक दो बार रिपीट करके आप देख ले, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या तो आप वो ईमेल कर देना, नहीं तो क्लासरूम में, क्लासरूम कमेंट बॉक्स है जहां आप अपना भी कमेंट्स डाल सकते हैं, तो वो करके क्वेरी पूछ लेना, ठीक है. सो आई विल कंटिन्यू द रेस्ट ऑफ दिस टॉक lecture on the slides in my next talk.